शैली। अरस्तु के अनुसार शैली की पूर्णता है, पूर्णता इसमें है कि वह निम्न हुए बिना स्पष्ट हो। स्पष्टता में खतरा इस बात का रहता है कि शैली प्रायः इतनी साधारण हो जाती है कि निम्न या तुच्छ प्रतीत होने लगती है। इसलिए अरस्तु जहाँ स्पष्टता को महत्व देते हैं, वहाँ इस बात पर भी जोर देते हैं कि स्पष्टता के प्रयास में वह निम्न या तुच्छ न हो जाए। स्पष्टता प्रचलित या उपयुक्त शब्दों के प्रयोग से आती है और गरिमा असामान्य शब्दों के प्रयोग से। असामान्य से अरस्तु का तात्पर्य अपरिचित, लाक्षणिक तथा दीर्घीकृत शब्दों में से है। इसलिए उनका कहना है कि कवि या लेखक के लिए स्पष्टता काम्य तो है पर गरिमा के साथ, क्योंकि गरिमा से रहित स्पष्टता निम्नता में परिणत हो जाती है। साथ ही औचित्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। लक्षणा को अरस्तु प्रतिभा का प्रमाण मानते हैं। लक्षणा से सुसुष्ट प्रयोग का अर्थ है कि लेखक में साम्य को देखने की क्षमता है। लक्षणा सिखाई या बताई नहीं जा सकती, वह केवल वह लेखक में अंतःस्फूर्त हो जाती होती है। उपमा कालिदास से की उक्ति कालिदास की साम्य को देखने वाली विशिष्ट दृष्टि को ही व्यक्त करती है। महाकाव्य। अरस्तु ने महाकाव्य का लक्षण नहीं दिया, उसका सविस्तर विवेचन भी नहीं किया, केवल कतिपय स्थूल विशेषताओं का उल्लेख मात्र कर दिया है। यह बात यह है कि अरस्तु की सृष्टि में दुखांतक ही काव्य का चरम प्रकर्ष है। दुखांतक से भिन्न जो कोई भी काव्य भेद है वह उससे हीन कोटि का है, अतः उसका निरूपण अत्यंत संक्षिप्त और असाधारण है। अरस्तु के अनुसार महाकाव्य के निम्नलिखित स्वरूपाधायक तत्व हैं। पहला, महाकाव्य आख्यानात्मक होता है। दूसरा, उसके कथानक का निर्माण नाट्य सिद्धांतों पर ही होता है, अर्थात उसमें भी आदि मध्य और अवसान से युक्त एक ही काव्य व्यापार हुआ करता है। तीसरा, पात्र उच्च होते हैं। चौथा, विस्तार निर्बध होता है। छठा, पांचवा, छंद एक ही प्रयुक्त होता है। छठा, अंगों की परस्पर अन्विति सजीव प्राणी के समान होती है। महाकाव्य और दुखांतक का साम्य वैषम्य। दुखांतक के समान महाकाव्य भी कथा वस्तु सरल या जटिल, नैतिक या कारुणिक हो सकती है। गीत और दृश्य को छोड़कर दुखांतक के सार शेष चार अंग कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना महाकाव्य में भी होते हैं, क्योंकि उसमें भी अधिक भी स्थिति विपर्यय अभिज्ञान आदि निविष्ट हुआ करते हैं। महाकाव्य और दुखांतक दोनों में विचार और पद योजना का कलात्मक होना आवश्यक है। यो तो साम्य हुए वैषम्य के आधार हैं। छंद और विस्तार महाकाव्य एक तो छंदोबद्ध होता है, दूसरे आख्यानात्मक होने से उसका विस्तार अधिक निर्बद्ध होता है। दुखांतक ही की तरह उसमें दृश्यों अथवा पात्रों का बंधन नहीं होता, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि विस्तार मर्यादाहीन हो जाए। जैसा कहा जा चुका है कि अरस्तु अनुपात को सौंदर्य का अनिवार्य आधार मानते हैं। कोई भी अनुपातहीन वस्तु सुंदर नहीं होती, महाकाव्य भी इसका अपवाद नहीं है। विस्तार से निर्बध होने का तात्पर्य इतना ही है कि दुखांतक की तुलना में महाकाव्य का कथानक अधिक विस्तृत हो सकता है। दुखांतक के समान महाकाव्य में भी अद्भुत मार्वलस तत्व का होना आवश्यक है, किंतु अयुक्त इरिटेशनल के समावेश का जैसा अवकाश महाकाव्य में है वैसा दुखांतक में नहीं, क्योंकि वर्णन के में अयुक्त अलक्षित रह जाता है पर मंचन में अलक्षित नहीं रह सकता। उदाहरणार्थ, महाकाव्य में हनुमान का समुद्र लंघन नहीं खटकता, किंतु मंच पर वह हास्यास्पद हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि महाकाव्य के कवि को भी असंभाव्य संभावनाओं की तुलना में संभाव्य असंभावनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। दुखांतक के कथानक में तो अयुक्त इरिटेशनल कथांशों की योजना होनी ही नहीं चाहिए, कारण कि उनसे आस्वाद विघ्नित होगा। नाटक देखते समय प्रेक्षक के मन में जहां भी कोई बात खटकी वहां रस प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। इसलिए अरस्तु दुखांतक में अयुक्त की योजना का विरोध नहीं करते। महाकाव्य में एक सुविधा है कि एक साथ घटित अनेक घटनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं, और यदि वे प्रासंगिक हो तो उनसे काव्य में घनत्व तथा गरिमा आती है। कलात्मक महत्व की दृष्टि से महाकाव्य की अपेक्षा दुखांतक को अरस्तु श्रेष्ठ मानते हैं। दुखांतक को श्रेष्ठ मानने का आधार है, पहला, उसमें महाकाव्य के सभी तत्व वर्तमान रहते हैं पर महाकाव्य में दुखांतक के सभी तत्व वर्तमान नहीं रहते। दूसरा, संगीत और दृश्य योजना से दुखांतक का प्रभाव बढ़ जाता है क्योंकि संगीत में मोहकता तथा दृश्य योजना से कथानक में सजीवता आ जाती है। महाकाव्य में ये दोनों चीजें नहीं होती। तीसरा, महाकाव्य की तुलना में दुखांतक की कथा वस्तु और अन्विति यूनिटी अधिक सुबद्ध होती है क्योंकि महाकाव्य के समान दुखांतक में कथा का मनमाना कथा विस्तार नहीं किया जा सकता। चौथा, दुखांतक का आनंद खेद कर ही नहीं पढ़कर भी उठाया जा सकता है। यहाँ अरस्तु ने एक संगत संकेत किया। नाटक दृश्य काव्य है, इसका यह अभिप्राय नहीं कि उससे आनंद प्राप्त करने के लिए मंचन अनिवार्य हो। मंचन से उसमें वैशिष्ट या चमत्कार अवश्य अधिक होता है, परंतु पाठ्य रूप में भी उसकी वह क्षमता अबाधित रहती है। काव्य दोष 25वें अध्याय में अरस्तु ने काव्य दोषों का साथ ही उनके निराकरण का विवेचन किया। उन्होंने दोषों के 5 आधार माने, पहला, असंभव वर्णन, दूसरा, अयुक्त वर्णन, तीसरा, अनैतिक वर्णन, चौथा, अविरुद्ध वर्णन, पांचवा, शिल्प विधातक वर्णन। इनमें प्रथम चार का संबंध कथा वस्तु से है और अंतिम का काव्य शिल्प से। असंभव वर्णन इसलिए दोष है कि मन में ग्राह्य नहीं होता। अयुक्त वर्णन में संगति नहीं होती, अर्थात उसमें कार्य कारण का भाव का अभाव खटकता है। अनैतिक वर्णन में स्वीकृति मूल्यों की अपेक्षा रहती है। विरुद्ध वर्णन में दो विरोधी वस्तुएं पारस्परिक सामंजस्य को बाधित कर प्रभावहीन बन जाती हैं। शिल्पगत दोषों काव्य सौंदर्य का विधातक होने से सहृदय को उद्वेजक प्रतीत होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अरस्तु का दोष निरूपण भारतीय काव्यशास्त्र के रूप दोष निरूपण की तुलना में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत अत्यंत सामान्य है। हमारे प्रारंभिक आचार्यों का भी दोष निरूपण कहीं अधिक विशद है। मम्मट 11वीं शताब्दी और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी का दोष निरूपण तो इतना व्यापक है कि उससे अरस्तु की कोई तुलना ही नहीं। अरस्तु ने दोषों के दो भेद किए, तात्विक इजेंटियल और अनुसंगिक एक्सीडेंटल। तात्विक दोष वह है जो काव्य के मर्म को आहत करता है। इसका कारण कवि की आसक्ति अर्थात अक्षमता है और इसका निराकरण अशक्य है। आनुसंगिक दोष ज्ञान अथवा अवधान की कमी से उत्पन्न होता है और इसका समाधान अथवा निराकरण संभव है। ये बहुत कुछ भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित क्रमशः नित्य और अनित्य दोष हैं। आनंद वर्धन ने इन्हें अशक्तिकृत और अव्युत्पत्तिकृत कहा। यदि कवि में शक्ति प्रतिभा रहती है तो अव्युत्पत्तिकृत दोष छिप जाता, किंतु अशक्तिकृत दोष को छिपाना संभव नहीं होता। काव्यशास्त्र में निरूपित विषयों का यह संक्षिप्त पर विशेष विवेचन अरस्तु के काव्य विषयक सिद्धांतों और निरूपण प्रणाली के अवगम का आवश्यक आधार प्रस्तुत करता है। आगे अरस्तु के की कतिपय महत्वपूर्ण अवधारणाओं की व्याख्या समीक्षा है। प्रकृति नेचर। अरस्तु के काव्यशास्त्र में अनेक शब्द ऐसे हैं जो उनके कला विवेचन की कुंजी है और जिनका सही तथा निश्चित अर्थ जाने बिना उनकी कला विषयक अवधारणाओं को समझना कठिन है। पाठक की यह कठिनाई इसलिए और भी बढ़ जाती है कि अरस्तु ने न तो उन शब्दों की कोई परिभाषा दी है न व्याख्या की। यही कारण है कि अरस्तु के व्याख्याकार एक दूसरे से इतनी दूर हट जाते हैं कि उनमें किसे ठीक माने और किसे बेठीक यह तय करना असंभव हो जाता है। इस यदृच्छा पर खींच कर ही बूचर ने कहा है कि अरस्तु के अविवेकी श्रद्धालुओं ने उनमें उन सौंदर्य शास्त्री प्रश्नों को साथ ही उत्तरों को भी ढूंढ निकाला है जो अरस्तु के मस्तिष्क में कभी आए भी नहीं होंगे। विद्वानों की इस विषमवादी कोलाहलपूर्ण मूर्छना में संगत और शुद्ध स्वर को पहचानना कितना दुष्कर है यह कहने की आवश्यकता नहीं, और तारीफ यह है कि उस मूर्छना का प्रस्तार आज भी बंद नहीं हुआ है। एक एक शब्द पर जितना लिखा गया है वह स्वतंत्र विवेचन का विषय है। भरत के रस सूत्र के संयोग तथा निष्पत्ति शब्दों को लेकर जो उहापोह तथा मतांतर हुए हैं उसकी उनकी तुलना में अरस्तु द्वारा प्रयुक्त शब्दों की स्थिति कहीं अधिक जटिल है और भयावह है। ऐसे शब्दों में उल्लेख है प्रकृति, अनुकरण, कार्य व्यापार और विवेचन। इन शब्दों की संक्षिप्त बोधगम्य व्याख्या की ही यहाँ अभिलक्षित है। अरस्तु से पहले ग्रीस में कला शब्द का प्रयोग प्रधानतः उपयोगी कला यूजफुल आर्ट के लिए ही होता था। अरस्तु पहले आचार्य हैं जिन्होंने उपयोगी कला यूजफुल आर्ट और ललित कला फाइन आर्ट का भेद स्पष्ट किया, साथ ही ललित कला की पृथक सत्ता एवं स्वायत्तता घोषित की और इस रूप में उसका विवेचन किया। इस प्रकार उन्होंने उपयोग और सौंदर्य का क्षेत्र विभाजन कर सौंदर्य को शास्त्रीय चर्चा का विषय बनाया, धर्म और राजनीति से शिक्षा और नैतिकता को से अलग हटकर कला के निरूपण का यूरोप में यह अभिनव प्रयास किया। कला प्रकृति का अनुकरण है, आर्ट इमिटेट्स नेचर। यह अरस्तु के कला सिद्धांत का एक प्रकार से सूत्र वाक्य मान लिया गया है। जैसा हम दिखा चुके हैं यह वाक्य अरस्तु के काव्य शास्त्र का नहीं बल्कि भौतिक का है। प्रकरण से विच्छिन्न होने के कारण इसका मूल अर्थ धूमिल हो गया है। प्रकृति नेचर शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अनेक अर्थों में किया है। उनकी शब्दावली में प्रकृति केवल बाह्य प्रकृति वृक्ष वन लता गुल्म नदी पर्वत आदि का वाचक नहीं है। भौतिकी में प्रकृति के विभिन्न अर्थों की जो उन्होंने तालिका दी है उससे उसके अर्थ विस्तार का पता चलता है। प्रकृति के कम 6 अर्थ अरस्तु को अभिप्रेत हैं। उनके अनुसार पहला गति के साधन सोर्स या कारण काज को प्रकृति कहते हैं। दूसरा प्रकृति का अर्थ वस्तु या विषय सब्जेक्ट भी होता है। तीसरा प्रकृति तत्व का भी पर्याय है, प्रकृति इक्वल टू तत्व। चौथा आकृति शेप या रूप फॉर्म को भी प्रकृति कहते हैं। द फॉर्म इन डीड इज द नेचर रेदर देन द मैटर। पांचवा प्रकृति का प्रयोग विकास प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के लिए भी होता है। छठा कुछ लोग प्राकृतिक पदार्थ की प्रकृति अथवा द्रव्य को उसके अव्यवहित घटक से अभिन्न मानते हैं जो अपने आप में व्यवस्थाहीन है। इसके अनुसार प्रकृति घटक सब आइडेंटिफाइड द नेचर ऑफ सब्सटेंस ए नेचुरल ऑब्जेक्ट विथ दैट इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इट विच टेकन बाई इट सेल्फ इज विदाउट अरेंजमेंट। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रकृति के इन विभिन्न अर्थों में से किसी एक को इदमित्थतम कहकर ग्रहण करना प्रकरण सापेक्ष ही हो सकता है। इसलिए बूचर ने प्रथम और पंचम कोटि के सम्मिलित रूपों को ध्यान में रखकर प्रकृति का अर्थ किया है। विश्व की सर्जनात्मक शक्ति क्रिएटिव फोर्स या उत्पादक सिद्धांत प्रोडक्टिव प्रिंसिपल जो वस्तुओं को आंतरिक धर्म है, फलतः प्रकृति के समान कला भी कुछ प्रयोजनों को दृष्टि में रखती है और साध्यों के अनुकूल साधनों के उपयोग में प्रकृति के से संकेत ग्रहण करती है, क्योंकि किसी न किसी रूप में प्रकृति भी अचेतन कलाकार अनकॉन्शियस आर्टिस्ट है। इसलिए सामान्यतः कला प्रकृति की पद्धति का अनुकरण करती है और उसी के अनुसार साध्य प्रयोजन का निर्धारण करती है। उदाहरणार्थ प्रकृति का लक्ष्य है स्वस्थ रखना, किंतु इसमें जब वह असफल होती है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार परिवार या कबीला प्रकृति की देन है, किंतु मनुष्य के अस्तित्व में अस्तित्व के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के अस्तित्व को पूर्ण निरापद बनाने के लिए राज्य का संगठन अपेक्षित होता है और इसके लिए राजनीति की कला जरूरी हो जाती है। तात्पर्य कि स्वास्थ्य प्रकृति सिद्ध होते हुए भी स्वतः पूर्ण नहीं है, उसके लिए चिकित्सा की कला अपेक्षित है। इसी तरह परिवार के प्राकृतिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए राजनीति की कला जरूरी है। इसी प्रकार सभी उपयोगी कलाओं का प्रयोजन है प्रकृति की कमियों को पूरा करना। अतः जो भी किसी कला में प्रवीण होना चाहता है उसी उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह प्रकृति के सिद्धांतों का पहले सम्यक अध्ययन करे, फिर उसके द्वारा संकेतित पद्धति को साध्य की सिद्धि के लिए काम में लाए। निष्कर्ष यह कि कला प्रकृति की पूरक है और इसके लिए वह प्रकृति से निर्देश भी प्राप्त करती है। बूचर के अनुसार प्रकृति के अनुकरण का यही अभिप्राय है। उपयोगी कला और ललित कला में अंतर यह है कि उपयोगी कला स्वोद्देश्य होती है और व्यवहारिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। ललित कला व्यवहारिक आवश्यकता की चिंता नहीं करती, केवल सौंदर्य को अपना साध्य मानती है। दूसरे शब्दों में उपयोगी कला में व्यवहारिक उपयोगिता की प्रधानता होती है और ललित कला में केवल सौंदर्य मूलक आनंद की। उपयोगी कला वस्तु पर आधारित होती है, ललित कला बिंब पर। अनुकरण इमिटेशन और कार्य व्यापार एक्शन। इमिटेशन जो यूनानी में मिमेसिस का अंग्रेजी अनुवाद है, प्लेटो के समय में कला विषय चर्चा का उल्लेख अंग रहा है और विगत 2500 वर्षों में इसकी न जाने कितनी व्याख्याएं हुई है। अरस्तु के काव्यशास्त्र में प्रयुक्त व्यवहार्थक तथा व्याख्या सापेक्ष अनेक शब्दों में यह अन्यतम है। अरस्तु ने इस शब्द की न तो कोई व्याख्या की है और न अर्थ की सीमा निर्दिष्ट की है, अतः तमाम व्याख्याओं के बावजूद आज भी इसका अर्थ निश्चित नहीं हो पाया है। प्लेटो की आलोचना के क्रम में हम देख चुके हैं उन्होंने मूलतः इसका प्रयोग नकल के अर्थ में किया है। नकल के साथ गहरा या निंदा का भाव कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है और प्लेटो को वही अभिमत भी रहा है। हालांकि यह भी स्मरण रखना चाहिए कि प्लेटो के अन्य ग्रंथों में मिमेसिस के अर्थ में छाया भेद भी होता गया है। इसके विस्तार में यहाँ जाना अपेक्षित, किंतु इतना तो स्पष्ट है ही कि छाया भेद के होते हुए भी गहरा के भाव से यह सर्वथा मुक्त नहीं हो रहा। अनुकरण या मिमेसिस गहरा का विषय इसलिए है कि उसमें सृजनात्मक स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है। कर्ता निर्माता और अनुकर्ता नकलची का अंतर उनकी कृतियों के मूल्य तथा महत्व में भी अंतर ला देता है। यह ऐसे उदाहरण भी दुर्लभ नहीं है जब अनुकर्ता उत्कर्ष निर्माता से बढ़ जाता है और उसका अनुकरण मौलिक निर्माण से अधिक चमत्कारी प्रतीत होने लगता है। इसलिए कुछ लोग अनुकरण को तत्वतः गहरणीय नहीं मानते। देखने में भी आता है कि किसी प्राकृतिक वस्तु या दृश्य का चित्र मूल की तुलना में प्राय अधिक सुंदर, आकर्षक और व्यवस्थित होता है। अतः उनका कहना है कि अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण इम्प्रूव्ड वर्जन होने से अधिक कलात्मक होता है। प्लेटो ने जिन कारणों से अनुकरण को निम्न कोटि का व्यापार माना था उनकी समीक्षा हो चुकी है। अरस्तु ने अनुकरण शब्द को तो अपने गुरु से लिया है, उसमें निहित तीम्रता का भाव निरस्त कर कला निरूपण का उसे अनिवार्य उपादान सिद्ध किया है। अनुकरण मिमेसिस केवल नकल है और उसमें सर्जकत्व का अथवा उत्कर्षाधायकत्व का सर्वथा अभाव है। इसका भी उन्होंने खंडन किया, जैसा उनके अनेक संकेतों से स्पष्ट है। उदाहरणार्थ वे काव्यशास्त्र अध्याय 25वें में कहते हैं कि अनुकर्ता होने के नाते कवि को चित्रकार या अन्य कलाकार के समान तीन वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण करना पड़ता है। पहला, जो वस्तुएं थी या हैं। दूसरा, उन्हें जैसा कहा या माना जा सकता है, माना जाता है, अथवा तीसरा उन्हें जैसा होना चाहिए। इन वस्तु कोटियों में तृतीय उन्हें जैसा होना चाहिए स्पष्ट ही आदर्शात्मक है। अनुकरण तो उसी वस्तु का संभव है जिसकी सत्ता थी या है। द्वितीय कोटि को भी गौरतः ही सही अनुकरण की सीमा में रख सकते हैं। किसी वस्तु को जैसा कहा जाए या माना जाता है का अर्थ है उसके संबंध में प्रचलित लोक धारणा और लोक धारणा के आधार पर ही वस्तु का अनुकरण शक्य है। किंतु तृतीय कोटि में अर्थात जैसा होना चाहिए में तो कोई वस्तु है ही नहीं, अभी तो उसे होना है। कलाकार अपनी मान्यता, विश्वास, संस्कार आदि के आधार पर किसी वस्तु का जैसा भी काल्पनिक रूप प्रस्तुत करना चाहे कर सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वस्तु जगत में जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो शुद्ध आदर्श है, उसके अनुकरण का प्रश्न ही नहीं है। हाँ, कवि या कलाकार वस्तु सत्ता के अभाव में भी कल्पना के द्वारा कलाकृति की सृष्टि कर देता है। अतः प्लेटो का यह कहना है कि कलाकृति वस्तु जगत का अनुकरण मात्र होने से सत्य से अपेत दूर है, अमान्य है, क्योंकि कलाकृति सदा वस्तु जगत का अनुकरण कहीं होती है। बहुत बार वह केवल कल्पना की उपज हुआ करती है। ऊपर की चर्चा के दो निष्कर्ष हैं। पहला, काव्य या कोई अन्य कला प्रकृति का कोरा अनुकरण या नकल नहीं है। जहाँ वह अनुकरण है भी वहाँ मूल ओरिजिनल से अधिक रमणीय और आकर्षक हुआ करता है। इसलिए अनुकरण होने से ही उसे निम्न या गहनीय नहीं कहा जा सकता। दूसरा, वह सदा अनुकरण ही हो यह भी आवश्यक है नहीं। बहुधा वह अनधिगत आदर्श का प्रतिरूप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजलाइज्ड आइडियल होता है, अर्थात उसमें कुछ ऐसा तत्व जुड़ जाता है जो मूल में नहीं रहता। फलतः मूल पर आधारित होते हुए भी उसमें मूल से भिन्न बन जाता है। वस्तुतः प्रकृति का अनुकरण का जो प्रचलित अर्थ था वह ललित कला के संदर्भ में अरस्तु को अभिमत नहीं है। बूचर का कहना है कि अरस्तु के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण के तीन विषय हैं। पहला, चरित्र कैरेक्टर, दूसरा भाव इमोशन, और तीसरा कार्य व्यापार एक्शन। अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त इनके क्रमशः यूनानी पर्याय हैं एथोस, पाथोस और प्राक्सिस। चरित्र के अंतर्गत वे सभी विशिष्ट नैतिक गुण या स्थायी चित्रवृत्तियाँ आती हैं जो संकल्प शक्ति को प्रकट करती हैं। द पोएट विंग्स इन इमिटेटर लाइक ए पेंटर आर एनी अदर आर्टिस्ट मस्ट ऑफ नेसेसिटी इमिटेट वन ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट थिंग्स एज द वेयर आर थिंग्स एज दे आर सेंड आर थॉट टू बी आर थिंग्स एज दे आर टू बी ATPFA। भाव शब्द से अनुकृति या संवेदना की अस्थायी मनोदशाएं अभिप्रेत हैं। कार्य व्यापार समीचीन आंतरिक कार्यों को बोधित करता है। कोई भी कार्य जो केवल बाह्य क्रिया प्रक्रिया या घटना श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है, सौंदर्यात्मक अनुकरण या उपयुक्त विषय नहीं बनता। कला जिस कार्य व्यापार प्रैक्सिस को प्रस्तुत करने का प्रयास करती है वह मुख्यतः आंतरिक प्रक्रिया है। बूचर के शब्दों में वह बहिर्मुख क्रियाशील आत्मिक ऊर्जा ए फिजिकल एनर्जी वर्किंग आउटवर्ड्स है। इसमें भी वे भी सभी कार्य प्रसंग घटनाएं स्थितियां आ जाती हैं जो संकल्प के आंतरिक प्रयत्न से उद्भूत होती हैं अथवा विचार या अनुभूति किसी प्रचेष्टा को प्रकाशित करती हैं। उपर्युक्त व्याख्या के आलोक में अरस्तु के इस कथन कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन आर मेन इन एक्शन पोएटिक्स, सेकंड संगति सुकर हो जाती है, जो कुछ भी मानसिक जीवन को व्यक्त करता है विवेक संपन्न व्यक्ति को को द्योतित करता है, वह कार्य व्यापार एक्शन की सीमा में गतार्थ माना जाएगा। ऐसा कार्य व्यापार दीर्घ काल व्यापी ही हो यह आवश्यक नहीं, वह किसी एक क्षण में भी चरितार्थ हो सकता है, एक विशिष्ट मनोदशा या निश्चित परिस्थिति में भी निष्पन्न हो सकता है। बूचर का निष्कर्ष है कि अरस्तु के कार्य व्यापार एक्शन में चरित्र भाव और कार्य व्यापार तीनों का समाहार है, अर्थात कार्य व्यापार शब्द के द्वारा तीनों को का बोध अभिष्ट है। कार्य व्यापार की इस व्यापक परिधि में समस्त मानव जीवन समाविष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मानव जीवन सभी कलाओं का सामान्य उत्स है। जब हम मानव जीवन कहते हैं तो मानसिक प्रक्रियाएं, आध्यात्मिक गतिविधियां, बाह्य कार्यों के उत्पादक, आंतरिक स्रोत आदि सब उसमें आ जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भूदृश्य, लैंडस्केप, पशु आदि सौंदर्यात्मक अनुकरण के विषयों में परिगणित नहीं होते। सारा विश्व कला का उपकरण नहीं है। अरस्तु की जा मान्यता क्लासिकी यूनानी कवियों और कलाकारों के प्रयोग और कृतियों के अनुरूप ही प्रतीत होते हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में बाह्य जगत को उतना ही स्थान दिया है जितना कार्य व्यापार की पृष्ठभूमि के रूप में अपेक्षित है। साथ ही मानव जीवन में भावात्मक तत्व की दृष्टि से ग्राह्य है और मानवीय संवेदना तथा रुचि को उद्दीप्त करने में समर्थ है। द प्रैक्सिस दैट आर सीक्स टू प्री प्रोड्यूस इज मेनली एन इनवर्ड प्रोसेस, ए फिजिकल एनर्जी वर्किंग आउटवर्ड्स डीड्स इंसिडेंट्स इवेंट्स सिचुएशन बीइंग इंक्लूडेड अंडर इट सो फार एज दे सब स्प्राइंग फ्रॉम एन इन वर्ड्स एक्ट ऑफ व्हील और इलेक्ट्रिक सम एक्टिविटी ऑफ थॉट आर फीलिंग, पेज नंबर 123।